और आप यहाँ एक छोटी सी बात और नोट करें, फिर आगे चलते हैं, और वो क्या कि बिसब्र, सब्र के साथ और नमाज के साथ। पहले तो आप इसको समझें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये पेंसिल आप ले लें, इसका मतलब ये कि मैंने आपको ये पेंसिल दे दी और ये पेंसिल आपकी हो गई, आपने जाके अपने पर्स में रख ली, एक तो बात ये है। और मैं आपको दूसरी शब्द में कहूँ कि आप इस पेंसिल से मदद ले लें, तो मतलब क्या हुआ कि आप इस पेंसिल को यूज़ करें, इससे नोट्स ले लें जो नहीं लिख रही थी, आपका पेन नहीं चल रहा था। यहां अंदाज के बिसब्र, सब्र के साथ मदद लो, ये नहीं कि सब्र को जाके किसी पाउच में डाल के रख दो, मुराद है कि सब्र को कैश कराओ, इस सब्र के साथ अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे काबू पाओ। और इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह को पता है कि कौन इस रास्ते में मुश्किलात सह रहा है, मनसबे अमामत पे मामूर होने के बाद अब काम आएंगे, होंगे कि नहीं। कभी ऐसा हो कि किसी की जॉब लेटर कबूल हो जाए और उसको ऑफर हो जाए और उसके बाद उसे कहा जाए सोते रहो? जैसे ही किसी की जॉब पक्की हो जाती है उसके बाद क्या होता है बताइए? खुश होता है ना, यूनिफॉर्म होगा, जॉब शुरू हुई, अब आप उसकी तैयारियां कर रहे हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, फिर सुबह आप जल्दी उठेंगे, फिर आप बस पकड़ेंगे, फिर आप वहां जाएंगे, फिर 5-6 घंटे की काम करके फिर वापसी के सारे मराहल लेंगे, इसका नाम है ना जॉब बनी। तो कभी ऐसा हुआ कोई कहता है ये लीजिए जी ये आपका जॉब लेटर है, अब आपको मिल गई, अब जाके सो जाए? उम्मत मुस्लिमा को क्या कहा, वकजालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ये क्या था, जॉब मिल गई, तो अब क्या कहा, जाके सो जाओ। आज उम्मत इस जॉब लेटर पे साइन करने के बाद सो रही है, जैसे ही जैसे आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और जाके सो जाएं, हो जाएगा कोर्स आपका, मेडिकल कॉलेज में दाखला ले लें और जाके सो जाएं, जी मिल गया, अब काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि ये रास्ता कोई फूलों का रास्ता नहीं है, इस पर तुम्हें जान भी देनी पड़ेगी, माल भी देना पड़ेगा, मुश्किलात भी होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर सब्र होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर रहमतें आम होंगी। इस्ताईन बिस्सब्री वस्सलात, और इधर इस्ताईन बिस्सब्री सलात इस्तकामत भी है, बस जम जाओ, ठुक जाओ, अल्लाह के रास्ते में जब निकले हो अब बड़े से बड़ा तूफान आ जाए तुम्हारे आसाब ना टूटे, मजबूत हो जाओ। मोमिन जो होता है वो इस तरह से छुई मुई का फूल नहीं होता, वो हक और बातिल के रास्ते की जो फ्रिक्शन होती है उसको बर्दाश्त करता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कि एक ऑपोजिट द विंड जाने वाली कैफियत है, सोसाइटी आपको कहीं और बुला रही है, कुरान आपको कहीं और बुला रहा है, फिर इसमें हर मौके पे मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रहती हैं। तो इसलिए फरमाया सब्र करो, खुद भी जमना है, दूसरों को भी जमाना है, अल्लाह की इताअत भी करनी है, नाफरमानियों से रुकना है, अल्लाह के बागियों से जिहाद करना है, हक के खिलाफ जब लोग बातें करते हैं, साजिशें करते हैं, तो उसको सुनकर सब्र करना है, हक वाले बहुत थोड़े हैं, साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, उस किल्लत पे सब्र करना है, इस रास्ते के खतरों पे सब्र करना है, नफ्स के रुझानात हैं, दिल अपना अभी भी नहीं सही हुआ, अभी तो थोड़ी देर बाद दिल चाहता है कि जरा पीछे झांक के देख लें कि अच्छी चीजें देखते और सुनते थे, बोलते थे, अब तो कोई फन ही नहीं रहा। इतनी मुख्तलिफ आंधियों के बीच में एक बंदा चल रहा होता है तो उसमें कहा वस्ताईन व बिसब्री वसलात। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस एक आयत में अल्लाह ताला ने ह्यूमन साइकोलॉजी को खोल के रख दिया। कहते हैं ना घबरातुन दिए बाद मुखालिफ से औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरे तसव्वुर में इस आयत को पढ़ाते हुए ऐसे आ रहा है जैसे राइड्स होती है ना, बात लोग खुद बड़ी तेज तेज राइड्स में जाते हैं, आप देखिए कितना थक जाता है इंसान ऐसी जगहों से आए तो, क्यों? क्योंकि अपने आप को बचाना होता है, घूम रही है, घूम रही है वो गाड़ी, तो आपने अपने आप को चाहे बेल्टों में बांधा लेकिन आपके असाब जो है वो थकते हैं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ये कुछ होता है। और इस रास्ते में अगर मुश्किल है तो नमाज, नमाज वो चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता, ये वो ज़ाते रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और ये वो रास्ता है जहाँ से इंसान को ताकत मिलती है और दिल मजबूत होता है और सब्र की रस्सी दराज होती है, टूटती नहीं है, नमाज मोमिन को बांध देती है। दुआ कीजिए कि एक कमज़ोर सा बंदा इतनी बड़ी हस्ती के साथ ताल्लुक़ जोड़ ले, बस असल बात यह है, बात लंबी होती जा रही है लेकिन फिर दिल चाह रहा है एक मिसाल ज़हन में अल्लाह ताला ने दी। आप देखिए कि एक छोटी सी बेल होती है ना, आप देखेंगे वो ज़मीन पे पड़ी रहती है, अक्सर लोगों के पाँव में ही आके उछल जाती है, कोई उस पर फल फूल लग भी जाए तो वो भी ज़मीन पे कीड़ों के साथ होता है। आप उसी कमज़ोर बेल को, जैसे ये देखें ये अगर बेल थी, ये इधर पड़ी हुई थी, अब आपने इस बेल को किया क्या कि बस इसका एक सिरा इधर से उठा के ना तो ऊपर एक रस्सी के साथ बांध दिया घर की छत के। अब क्या होगा भला, अब एक मजबूत है, आप इसको बना लें, आपने इसको अगर इसके साथ बांध दिया, अब आप देखिए कि ये रस्सी जब ऊपर जाएगी ना, तो एक दिन आएगा कि ये पूरी छत की तरह ऊपर आ जाएगी। इस मजबूत रस्सी ने या दरख्त ने इस कमजोर बेल को ऐसा सहारा दिया कि थोड़ी देर बाद इसके नीचे गुच्छे लटकने लग गए। ये कमजोर बेल मैं और आप है, ये मजबूत सहारा अल्लाह का है। अल्लाह कहता है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, अपने जो काम खुद नहीं कर सकते मेरे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हारी इस कमजोर बेल को जमीन पे नहीं फिर बिछने दूंगा, मैं तुम्हें इतना ऊंचा कर दूंगा कि तुम इंसानियत के लिए एक शेल्टर बन जाओगे। शर्त यही है कि बंदे के अंदर कमिटमेंट मौजूद हो, और फिर इसके बाद जब इंसान निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कैसे करता है, अगली आयत को देखिए कि अभी तो थोड़ी मुश्किलें आई हैं, इस रास्ते में तो जान भी चली जाएगी, लिहाजा वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए इनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ये लोग तो जिंदा हैं मगर तुमको इनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। पहले तो इस आयत का दूसरी आयत से रब समझ लीजिए, पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं सबर की बात सबर की बात, और यहाँ सबर और नमाज के साथ ही शहादत फी सबीलिल्लाह की बात देकर क्या बता दिया कि अभी जो मुश्किल आई हैं ये छोटी हैं, अभी इससे बड़ी मुश्किल आ सकती है। और वो क्या, अभी तो तुमने वक्त लगाना शुरू किया ना अल्लाह के रास्ते में, कुछ माल लगना लग गया तुम्हारा, कुछ तुम्हें अपने नफ्स के तकाजे दबाने पड़ते हैं ना, भूख प्यास पे सब्र करते हो ना, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी जान भी जानी पड़ी इस रास्ते में तो जाएगी, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी जान जाके भी जाएगी नहीं। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 169 में और 170 में भी यही बात आती है कि वला तखसबन्नल्लज़ीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाए उनको हरगिज मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिका युरज़कून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उनको रिस्क दिया जाता है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, वो खुशियां मना रहे हैं उस चीज पे जो फजल उनको अल्लाह ने दिया। व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यलहकू बिहिम मिन खल्फिहिम, और उनकी खुशखबरियां भी पाते हैं जो लोग अभी उनके पीछे हैं और उनसे मिले नहीं, कि अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो गमजदा नहीं होंगे। कहते हैं कि ये आयत जो है ये बदर के शुहदा के बारे में नाजिल हुई, कि जब गज़वे बदर के दिन 14 मुसलमान शहीद हो गए, 6 मुहाजरीन थे 8 अंसार में से थे, मुहाजरीन के नाम भी किताबों में मौजूद है और अंसार के भी मौजूद हैं, तो लोग उस दिन जाके यही कहने लगे हाय देखो फलां भी मर गया, हाय फलां भी मर गया मर गया, क्योंकि उस वक्त पहली जंग थी, किसी को पता भी नहीं था कि अल्लाह के रास्ते में मरने वालों को क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि उनकी शान में यह आयत उतरी कि वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, ये मर के भी नहीं मरे बल्कि ये जिंदा है। अब ये आयत पहली बातों में ये समझा रही है कि अल्लाह के रास्ते में जान भी जा सकती है, सब्र करना पड़ेगा, खुशियां मनानी पड़ेंगी, इस मिशन की तकमील के लिए अगर जान देनी पड़ी तो दे दो। सवाल पैदा होता है कि ऐसे लोगों को मुर्दा क्यों ना कहें, पहला सवाल, तो इसका जवाब लिखिए, क्योंकि वो मिशन जिंदा है जिसके लिए इन्होंने जान दी, वो दीन जिंदा है जिसके लिए इन्होंने जान दी, और वो जात अल हय्युल कय्यूम जिंदा है जिसके रास्ते में इन्होंने अपनी जानें दी। शर्त अव्वल लगा दी, ठीक है। दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि इनको मुर्दा इसलिए ना कहो कि इन्होंने अपनी ये वक्ती जिंदगी देकर एक अबदी जिंदगी खरीद ली है। शुहदा का अल्लाह के यहाँ बड़ा मुकाम है, हमारे यहाँ लफ्ज़ शहीद बड़ा कॉमन भी है और बहुत मिसअंडरस्टूड भी है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। दुनिया में शहादतें हक की गवाहियां देने वाला, आसान लफ्जों में कह दूं अल्लाह के दीन को फैलाने वाला जिंदा शहीद होता है, मर के वो आला दर्जे की शहादत पा लेता है। एक बंदा अल्लाह के दीन को अपने गोद के बच्चों से भी प्यारा रखता है, संभालता, ख्याल करता, गर्मी सर्दी से बचाता, लोगों के अकायद की इसलाह करता, उनकी आदात की इसलाह करता, इसी रास्ते में एक दिन ऐसा वक्त भी आ जाता है कि उसको अपनी जान देकर भी इस दीन को बचाना पड़ता है, तो अल्लाह ताला उसको एक आखिरत की शहादत दे देता है। शहीद से मुराद वो नहीं है कि जो नमाज भी ना पढ़े, रोजे भी ना रखे, फराइज की पाबंदी ना करे और किसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, तो खबर फैल जाती है फलां शहीद हो गए, फलां सारी जिंदगी सियासत के नाम पे काम करता रहा, को कुर्सी की इकतदार की जंग थी और मारे गए, और कहा ये हमारे शहीद और हमारे शहीदात हैं। किसी इंसान का नाम लेके ना मैं कुछ कह सकती हूँ, ना आप सोच भी नहीं सकते। जो मरा उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन शहीद वो है। लिखे ये तारीफ आपने कभी नहीं सुनी होगी शहीद की, अगर आपने कुरान को तफसीर से अभी तक नहीं पढ़ा। शहीद वो है जिसको दुनिया में धुन सवार होती है अल्लाह के दीन को बुलंद करने की। फिर कहा कि वो बिस्तर पे भी मारा जाए तो शहीद, वो ताउन की बीमारी से मारा जाए तो शहीद, बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में औरत मारी गई तो शहीद, जान बचाते हुए, ईमान बचाते हुए, माल बचाते हुए मारा गया तो शहीद, कस्बे हलाल की कोशिश में मारा गया तो शहीद, अचानक मौत तो शहीद। बात समझ आ रही है? ये सारे जो जुमले मैं बोल रही हूँ ये वो शहदा के मुख्तलिफ दर्जे हैं कि किस किस चीज़ पे हदीस में शहीद होने की खुशखबरी है। शर्त एक है कि पीछे से उसका दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ा हो। बात वैसे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। जो लोग पूछते हैं अच्छा फलां शहीद है, वो फलां बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए तो वो शहीद है, वो फलां जी बाज़ दफ़ा तो हाईजैकर्स तक और बाज़ दफ़ा तो क्रिमिनल्स होते हैं किसी मुल्क के, और उनकी मौत की सूरत में अखबारों में खबरें आ जाती हैं फलां शहीद हो गए। अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे जाने, लेकिन समझ के आ गई कि जिसकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल वाली होती है और उस शऊर के साथ जीता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी बातें रखी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब शहीद की ज़िंदगी कैसी होती है, तो यहाँ छोटी सी बात समझिए कि हर बंदे को दुनिया से जाने के बाद दोबारा उठाए जाने से पहले, बात वाज़े, फिर इसी मिसाल को ले लीजिए, ये आपकी दुनिया है, ये देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो जगह है ये एक बंदे की दुनिया की ज़िंदगी है जो मेरी और आपकी है। हमारे इस हैंड पे जो जगह है ना, ये हमारी जन्नत या जहन्नुम है, ये क़यामत के बाद की ज़िंदगी है। तो ये जो मेरा स्टेज आपने इधर रखा हुआ है ना, ये है बरज़ख़, इसको बरज़ख़ कहते हैं। ये वो जगह होती है कि मरने के बाद से लेकर दोबारा उठाए जाने के बीच का वक्त, जिसको हम आलमे कब्र भी कह सकते हैं। कोई डूब जाए, कोई जला दिया जाए, किसी को परिंदे नोच के खा जाए, कोई जहाज के क्रैश में मारा जाए, ये वक्त जो है ये बरज़ख़ है। बरज़ख़ क्यों कहते हैं? पर्दा, हमारी तरफ से एक आड़ आ जाती है। सूरत मोमिनून आयत 100 में आता है वमिम वरा इहिम बरज़ख़ुन इला योम युबअसून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक इनका ये बरज़ख़ है। आम लोगों का हाल क्या है, फिर शहीद का समझेंगे आप। आम लोगों का हाल क्या है कि जब कोई मरता है ना तो उसका इस दुनिया से रब्ता ख़त्म, उसको नहीं पता बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है, उसकी शादी है, उसका रिश्ता है। कि जो हमें ख्वाब आते हैं ना, माँ के कह गई ख्वाब में जी इधर रिश्ता कर दो, और माँ आ गई कि बेटी तू दुखी लग रही है, आते हैं ख्वाब और सच हो सकता है, ये सच हो सकते हैं, लेकिन ये आपका उनके साथ ताल्लुक है। दुनिया में भी आपको माँ के साथ दुख सुख की आदत थी, आज आप दुखी थे, ख्वाब में माँ आके आपके सर पे हाथ फेर जाती है, लेकिन इस स्टेज वाले बरज़ख़ पे सोई या फौत हुई माँ को नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। ये हमारा ईमान है, ठीक है। मोमिन की और काफिर की, फाजिर की, ये कब्र की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, इस पर हम इस वक्त बात नहीं करेंगे, हमारा मौजू नहीं है, लेकिन इसको एक किस्म का सिंबल बना दिया जाता है कि आगे कैसे हालात हैं। हम पढ़ेंगे सूरत अल अराफ में भी इंशाल्लाह, और सूरत इब्राहिम में भी पढ़ेंगे कि मरने के बाद रूह के साथ जो मामला होता है उसकी रोशनी में मोमिन की रूह को जन्नत दिखा दी जाती है, लेकिन वापस फिर इसी कब्र में आना है। काफिर को भी ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ला तुफत्तह लहुम अबवाबुस्समा, और उनको वापस डाल दिया जाता है। आम बंदा है, मोमिन अपना बरज़ख़ इस कब्र में यूज़ करता है, और वो इंतज़ार करता है कि अब क़यामत आए और मैं उस जन्नत में जाऊँ बिलफर्ज़, और काफिर दुआ करता है कि अल्लाह ना करे कभी क़यामत आए और मैं असल जहन्नुम में जाऊँ। लेकिन मोमिन का तो ये हाल है, मरा, मरने के बाद उसको दिखाई जन्नत, वापस ला दिया गया और कब्र में। लेकिन अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले का ये जो बरज़ख़ है ना, ये कब्र में नहीं होता। अल्लाह उसकी रूह को जन्नत के अंदर सब परिंदों के अंदर डाल के जन्नत में छोड़ देता है। सारा दिन खाते पीते चरते चुगते रहते हैं, और रात को अल्लाह ताला के अर्श के ऊपर कंदील लगे हुए हैं, बड़े बड़े जैसे शेंगलर्स, उनके अंदर आके सो जाते हैं। और हदीस में आता है कि जब रोज़ ऐसा होता है तो एक दिन अल्लाह ताला फिर उनको कभी पूछता है, क्या मेरे रास्ते के शहीदों तुम खुश हो? कहते खुश क्यों ना हो, जन्नत में खा रहे हैं पी रहे हैं, और सब्ज रंग के परिंदों में उनकी रूहें ढाली जाती हैं। जिस्म तो इधर ही होता है, लेकिन रूह के साथ ये सारा मामला किया जाता है। तो कहा जाता है कि बताओ खुश? वो कहते हैं बहुत खुश है। मांगो क्या मांगते हो? कहते हैं क्या मांगे अल्लाह, जो तूने हमें दे दिया इससे ज्यादा और क्या मांगे। फिर अल्लाह तआला कहते नहीं तुम मांगो, मैं तुमसे खुश हूं, मेरा दिल चाहता है मांगो। और आप देखिए अल्लाह क्यों ना उस बंदे की कदर करे जो उसके दीन की कदर करे। आप थोड़ी देर किसी का बच्चा होल्ड कर लेते हैं ना, तो माँ आके थैंक यू करके आपके गले लगती है। तो अल्लाह के दीन को आपने होल्ड किया हुआ है, आपको गम है नस्लों का, आपको फिक्र है लोगों के अकायद की इस्लाह की, आपको फिक्र है लोगों के लिबासों की, लोगों के दिमागी तवाजन ठीक हो जाए, क्या आपका ख्याल है अल्लाह कदर नहीं करेगा? लोग तो नहीं कदर करते, कर भी कोई नहीं सकता, कितनी कुक करेगा, नोक की कितनी कदर हुई, अल्लाह कदर करता है। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला उनसे कहता है कुछ मांगो, तो फिर वो शुहदा कहते हैं कि अगर अल्लाह तूने देना है ना तो एक बार फिर दुनिया में भेज। क्या मतलब उनको दुनिया याद आती है? नहीं, कहते अल्लाह एक बार दुनिया में भेज और फिर तेरे रास्ते में गर्दन कटाएं। जो लज्जत जिस्म से खून के कतरे गिरते वक्त तेरे रास्ते में कटते हुए आई थी, वो लज्जत आज भी मिस करते हैं। ये है ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। और वल्लाही ये तो मौत के बाद की बात है, अगर आपको दर्द लग जाए ना दीन का, तो आपकी दुनिया की भी जिंदगी ऐसी है, फिर आप बेखौफ व खतरा, फिर आपको कोई डिप्रेशन नहीं। दुनिया के खाने पीने पहनने उड़ने, जहां रात हुई सो गए, जो मिला खा लिया, ना मिला तो ना खाया, खा लिया तो खा लिया, यानी आपकी एक नई दुनिया बन जाती है जिसकी वजह से आप फिर अपनी ही सोचों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को ये सब मामला जो है वो वहां दिखाए जाते हैं, जिस्म के साथ कुछ भी हो। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वो इस तरह से हालात पैदा किए जाते हैं तो फिर हम उनको जिंदा समझें? नहीं, तुम नहीं जानते। वला की ला तशरून, बजाहर शहीद मरता है, उसकी बीवी बेवा होती है, वो दूसरी शादी कर सकती है अपनी इद्दत गुजारने के बाद, उसके बच्चे यतीम होंगे। बाज लोगों ने इस बात से गलत दलाइल लेकर कि देखो शहीद जिंदा है, उनकी कब्रों पर जाके मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह के बंदो, बात को समझा करो। जो बंदा कब्र में चला गया, जो जन्नत में चला गया, वो वहां से तुम्हें यहाँ औलाद और बेटे बेटियां देने के आएगा? तो यहाँ से फिर अकीदे की भी इसलाह जरूरी है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि मरने वाला अल्लाह करे इस दुनिया के नाते से मरे, लेकिन आखरत के नाते से वो जिंदा है और वो वहां अल्लाह तला के पास से ये सारी चीजों को लेके आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक्यात आते हैं, और एक वाक्य तो बिल्कुल सहाबा का आया था। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आपको सूरत आल इमरान में जब ये आयतें पढ़ाएंगे तो सुना दूंगी कि किस तरह शोहदा की रूहें ख्वाब में आके उस वक्त के हुक्मरान और जो उलमा इकराम थे उनको बता रही थी कि हमारी कब्रों में पानी आ रहा है। और फिर जब बार बार ऐसा हुआ और जाके वाकई वो जगह खोदी गई तो वहां पानी आ रहा था, और फिर सऊदी हुकूमत ने पूरे अहतमाम से उनकी कब्रों को खुलवा के, उनकी लाशों को निकलवा के दूसरी जगह दफन किया। और कहते हैं जब उनको निकाला गया तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद उनके कफन थे। शहीद को मट्टी नहीं खाती, उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल वैसी रहती है जैसे कि वो होता है। तो ये अल्लाह की कदरदानी है, वो कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, वो बहुत कदरदान है। आज उसके रास्ते में जरा थोड़ा सा आप निकल के तो देखें, कदर की हद कर देगा। लेकिन हमें कुछ दुनिया छोड़े तो फिर है, हमने तो वो मजा भी चखा ही नहीं जो मामला अल्लाह के मौजूद है। बाकी इस पे बहुत लंबी बहस है जिसकी इस वक्त हमें जरूरत नहीं, कि अम्बिया के साथ कब्रों में क्या हो रहा है। बास ने इसी से कई गलत किस्म की बातें निकाल ली कि अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, नऊज़ु बिल्लाह उनकी बीवियां उन पे पेश की जाती हैं और वो हमारे दुख सुनते हैं और सुख सुनते हैं। तो बस बात जितनी मौजूद है उतने पे रहते हुए अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस बात का गम लगा दे कि हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने की ख्वाहिश रख लें। इसीलिए अब आगे फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और अलबत्ता जरूर जरूर हम तुमको आजमाएंगे, श्योर शॉट इंग्लिश में आप लिख लें इसके तर्जुमे में, श्योर शॉट इट विल हैपन। ये हो ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह के दीन का नाम लो और तुम्हें आजमाया ना जाए। ये मसाइबे खमसा हैं, पांच किस्म की मुसीबतों का तذکرہ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है कि ये तो होके रहेगा। तुम्हें अल्लाह का दीन अगर प्यारा है तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें इसके मामले में अपने ऊपर फिक्र करनी पड़ेगी। किस तरह से? पहली चीज देखिए, बिशयन कुछ हद तक, ये मुराद है कि थोड़ा सा ही चाहे, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा, हर किस्म के हालात तो आएंगे ही, लेकिन कैसे किस हद तक होंगे? मिनल खौफ, खौफ आएगा, हम सहाबा के ऊपर देखें तो खौफ बहुत था दीन के इब्तदाई दिनों में, नमाजें तक नहीं पढ़ सकते थे। मदीना में आने के बाद हमले का इतना खतरा था कि अल्लाह के नबी ने एक दिन कहा कि कोई है जो आज की रात मेरे घर का पहरा दे और मैं सुकून से सोच सकूं। हथियार बांध के सोते थे सहाबा इकराम। आज मैं और आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर दीन की तरफ बढ़ते हुए कदम है तो खौफ है। पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, हस्बैंड प्रेशर, सास प्रेशर, किड्स प्रेशर, अब तो बच्चे प्रेशर डालते हैं। अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी आप बदलती जा रही हैं, अम्मी आप बहुत क्रैंकी हो गई हैं। तो जितना आप दीन पे आएंगे लोग आपको खौफजदा कराएंगे। और सबसे बड़ा खौफ क्या है कि जी शौहर दूसरी शादियां कर लेंगे। टप टप गिरते हुए आंसू मुझे एक लड़की के याद आ रहे हैं कि जिसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और रो के क्या कह रही थी कि मुझे लोगों ने कहा तुमने सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर दिया ना, तो अब तुम्हारा शौहर जो है ना वो बिगड़ा बिगड़ा रहता है। तो मैंने तो साजा उसके लिए पेंटे भी पहन ली थी, उसने फिर भी दूसरी शादी कर ली। तो मैंने कहा आपको आज खुद ही समझ आ गई अपनी बात का जवाब। हम क्या सोचते हैं दीन पे आएंगे घर टूटे, तलाक के, सास नाराज, ससुर नाराज, गोया के दीन से दूर लोगों से तो सब बड़े ही खुश हैं। जो बीवियां दीन से दूर हैं उनके मियाँ तो बहुत उनकी कदर करते हैं ना, जाके देखिए तो सही दीन से दूर सोसाइटीज और उन घरों के अंदर गंदगी कितनी है। तो लेकिन याद रखिए खौफ तो आएगा, लोग आपको डराएंगे। आप कुरान पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको कोई डराता है कि नहीं डराता, लेकिन लोग डराएंगे आपको भी आगे जाके। अभी तो नया नया शौक आपका भी बड़ा है ना, लोग डराएंगे, देख लो हाय मोटी हो गई हो, हाय बैठ गई हो, वेट गेन कर लिया, फिर तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा। यानी सब मोटी औरतों के मियाँ ने दूसरी शादियां कर ली हैं और जो दुबली पतलियां उनके मियाँ तो बहुत खुश हैं। धोखा, वल्लाही धोखा। मुझे तो ऐसे लगता है कि हम दीन को सौतेले बच्चे की तरह रखते हैं घर में, कोई चीज टूटी उस पर नाम लगा दिया, कोई चीज नुकसान होगा उस पर, और कुछ नहीं होगा तो वो कहेंगे ये आपके मियाँ को जॉब ही नहीं मिल रही, अब आप उसका साथ ही नहीं देती, बेचारे डिप्रेस है। हाँ देखो उन्होंने सिगरेट शुरू कर दी ना इसलिए कि आपने कोर्स शुरू कर दिया, आप उनका दुख सुख नहीं सुनती, वो बेचारे बैठ के फिल्में देखते रहते हैं। किसी के पास आएंगे, अच्छा जी आप तो कुरान पढ़ी, आपको कहे तो आपके जवान बच्चे इस वक्त घर में क्या देख रहे हैं, उनको टीवी पे लगा दिया। अपने बच्चे तुम्हारे खराब हो रहे हैं तुम दूसरे के बच्चों की सलाह की फिक्रों में लगे। इतना लोग आपको डराएंगे, यकीन करें आपको खुद खौफ पैदा हो जाएगा कि हम गलत रास्ते पे हैं। लेकिन समझ लें कि ये पहला संगे मील है, ये 5 साइन बोर्ड है। जैसे आप लंदन से मैनचेस्टर जाते हैं ना तो कम अज कम 5 शहर बीच में कोई आते ही होंगे ना छोटे बड़े, पहला आ जाए तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सही रास्ते पे हैं, दूसरा तीसरा है। तो अल्लाह के रास्ते में चलने चलाने वालों का पहला संगे मील खौफ है, ये खौफ लोग आपको दिलाएंगे। दूसरा वल जुई, भूख। अल्लाह अकबर, हमने तो क्या भूख सहनी है अल्लाह के रास्ते में, हमारी तो ब्रेक ही थोड़ी सी लेट होती है ना, दिल को कुछ होता है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, वॉशरूम में जाना होता, नहीं उठते। सहाबा का हाल क्या था, अबू हुरैरा बेहोश हो जाते थे, साहबे सुफा में से थे यानी हॉस्टल में रहते थे अल्लाह के नबी के दौर में, और सिर्फ इसलिए आपकी महफिल से उठ के बाहर नहीं जाते थे कुछ खाने पीने कमाने कि आपकी गैर मौजूदगी में अल्लाह के नबी कोई बात कहे तो मैं उससे महरूम ना रह जाऊं। हालांकि दूसरे भी बता सकते थे, कहते थे नहीं मैं डायरेक्ट सुन के आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता हूँ। और बेहोश ऐसे होते हैं, लोग कहते थे कि इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है, कहते थे मेरे अंदर इतनी जरूरत नहीं होती थी मैं कह सकूं कि लोगों मैं बीमार नहीं हूं, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी भी है। इस तरह से कभी भूख सहनी पड़ती है, हमने कहा सही है, हमारा तो हाल ही बहुत कमजोर है। हम तो एक वक्त का दोपहर का खाना जरा अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाए यहाँ आने की वजह से तो उसमें शर्मसार फिरते हैं। मत शर्मिंदा रहे अपने बच्चों से और मत शर्मसार रहे अपने शोहरों से अगर आप लंच में उनको गरम गरम रोटी 1 बजे नहीं खिला सकती जो पहले खिलाती थी। फखर करें, उनको बताएं कि इस दीन की बरकत कितनी आनी है घर में और आ रही है। ये गरम रोटी तो आपको कोई भी होटल वाला भी खिला देगा लेकिन ये दीन किसने आपको देना है? हम कमजोर होते हैं, हमारे घर वाले और कमजोर होते हैं। फिर नक्स मिन अल अम्वाल, माल तो कम होंगे, सेहतमंद जिस्म है, अक्लमंद है, दिमाग है, जॉब करें, हम सब भी निकल जाए ना जितने साथी यहाँ बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ कमाई हमारे घरों में आएगी। अक्ल भी बड़ी दी है अल्लाह ने हम सबको, हम कमाएं तो हम 100 के 1000 कर सकते हैं लेकिन हमने उसको जूते की नोक पे रखा, हमें नहीं चाहिए माल, अल्लाह हमारे शोहरों को सलामत रखे। कुछ ना कुछ कमी तो हुई, सहाबा किराम क्या कमा नहीं सकते थे? क्या अबू हुरैरा की कहानी सुनाई तो क्या वो बिजनेस माइंडेड नहीं थे? अबू बकर सिद्दीक बिजनेस माइंडेड नहीं थे? मक्का के अमीर तरीन ताजरों में थे अबू बकर, कोई एक जंग बता दें कि अबू बकर ने कहा सॉरी अल्लाह के नबी, जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, एक तरफ यूं रख के फेंकते थे जैसे बंदा जूता बदल के आगे चल पड़े, नो क्वेश्चन। फारिग होते थे तो काम करते थे, नहीं होते थे तो चल पड़ते थे। इसी तरह हम अपने असलाफ को पढ़ते हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात है गालिबन, मेरे जहन में अगर गलत ना आए, इमाम बुखारी के उस्तादों में थे, अपने साल के तीन हिस्से करते थे, चार चार महीनों के होंगे, 4 महीने खूब कमा लेते हैं, सीजन जिसको आप कहते हैं उसमें पैसा जमा कर लेते हैं, फिर एक हिस्सा जो सेकंड हिस्सा था उसमें इल्म सीखते सिखाते इल्मी काम करते, और तीसरा हिस्सा था जो प्रैक्टिकली जाके दीन फैलाते, और जिहाद करना पड़ता तो जिहाद करते। और इतना माल था उनके पास कि अपने साथ जो लोगों को लेके जाते थे उनको ये पता होता था कि हम अपने अपने खर्चे पे जा रहे हैं, ले लेते थे सबसे खर्चा, जब कर करा के सफर वापस आते उन सबको उनके पैसे फिर वापस कर देते, जो तुम्हारा खर्चा मेरे पे था। आप क्या सोचते हैं, दीन वाले भूखे नंगे होते हैं? लोगों को लगते तो भूखे नंगे हैं क्योंकि दिखता ही नहीं है ना इनका सोर्स क्या है, इनको कहाँ से मिलना है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे रास्ते में एक दफा अपना सब कुछ छोड़ के तो देखो। आप देखिए, आपने अबू बकर सिद्दीक का सुना ना, तबूक में पूरा घर छोड़ दिया, तो क्या तबूक के बाद अबू बकर जिंदा नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह रहे। तबूक हुई थी सन 9 हिजरी में, 10-11 आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, फिर उसके बाद 2 साल अबू बकर के, कमो बेश भी आप कर लेना कम से कम भी तो तबूक के बाद 3 साढ़े 3 साल जिंदा रहे। कहाँ से खाया होगा, घर तो सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। आप एक दफा दे के तो देखें, अल्लाह आपको उससे ज्यादा नया दे देता है। ये बात हमें समझ कोई नहीं आती, इसीलिए 100 साल पुरानी भी चीजें घरों में सजा के रखी है, देने का हौसला ही नहीं पड़ता। वो चीजें जो कभी नहीं खोली देखी, हम उनको ही संभालते रहते हैं, वो बिस्तरे जिन पे कभी नहीं सोए, हर साल धूप सवाए गर्मी लगा देंगे लेकिन उसको किसी गरीबों को नहीं देंगे। जब दिल में माल इस तरह कोलेस्ट्रॉल की तरह भरा होता है ना, फिर नहीं मोहब्बत आती दीन की। तो अल्लाह कहता है तुम दो नक्स मिन अल अमवाल, देना पड़ेगा। खड़ी फसलें तैयार होती थी, तबूक के लिए गए, सर्दी थी सख्त सर्दी थी, अहजाब में निकले, गर्मी उनको नहीं रोकती थी, सर्दी उनको नहीं रोकती थी, सेहत उनको नहीं रोकती थी, बीमारी उनको नहीं रोकती थी। तो अल्लाह कहता फिर मैं उनकी कदर क्यों ना करूं। और सबसे बढ़ के वाला अनफुस, जान नफ्स लगाने पड़ते हैं सबसे मुश्किल। इसके दो मुख्तलिफ मानी है, यानी तुम्हारा कोई अजीज फौत हो जाएगा, कोई प्यारा चला जाता है, लेकिन शहादत हक में जो नफ्स लगता है ना, वो सबसे पहले तो अना लगती है, आई माई सेल्फ मी, सबसे पहले जो दीन चोट लगाता है ना वो हमारी अना पे लगाता है। हम तो बाहर चौधरी साहब थे, इस कमरे में तो हमें कोई हिलने नहीं देता, बाहर तो हम रोप डालते थे, कुर्सी मेज पे बैठ जाते थे और लोगों के ऊपर अपनी बात मनवाते थे, यहां हमें मनवानी पड़ती है, बोलने भी नहीं देते, बात पूछे जवाब भी नहीं देते, कहते हैं लिख के दे दो, नफ्स कटता है। लेकिन वो फिर ऐसे जैसे आप देखिए ना, अना पे चोट पड़ती है, पड़ती है, पड़ती है, यूं फिर बंदा पिसता है, और वो सारा अंदर से जो खुमार होता है ना अपनी बड़ाई को निकलता है, और इंसान फिर पिचक के बैठ जाता है, कहता है अल्लाह मैं कुछ नहीं, या कना बुदू या कना स्तईन, ये नफ्स पे चोट पड़ती है, फिर नफ्स पे चोट जिसमें बैठना चलना फिरना, खाने में कमी पीने में, यानी जिस्म की राहत के साथ कभी भी इल्म नहीं मिलता। ये बड़े हमारे कहा करते थे, जिस्म की राहत के साथ कभी इल्म नहीं तुम्हें मिलेगा। एक काफी दिल से शुरू से ही इरादा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीजें हम कर ही नहीं पा रहे ना। एक पूरा टॉपिक मेरे पास तैयार है कि हमारे असलाफ को इल्म के रास्ते में क्या क्या मुश्किल पेश आई, आप सुने ना तो यकीन करें कि आंखों से छम छम हमारे आंसू गिरे, और साथ ही साथ शर्मिंदगी भी हो कि हम कितने पानी में, पूरे पूरे घर बेच देते थे। इमाम बुखारी ने अपना पूरा घर बेच दिया अपने इल्म के सफर के खर्चों के लिए। एक मुहद्दिस थे, वो जब निकले अपने घर से तो इतना गर्मी का था कि पाँव के नीचे के तलवे जो थे ना वो फट गए, खून निकल आया। एक थे वो कहते हैं कि जब मैं इल्म की तलाश में निकला तो मुझे गर्मी इतनी सख्त हो गई कि मुझे सुर्ख रंग का पेशाब आता था, जिसको अब यरकान कह ले। क्या आसान नहीं है, अनफुस नफ्स लगता है। अगर आपकी यहाँ कमर थकती है ना थोड़ी देर बैठने से, कदम भारी हो जाते हैं, तो कहें अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे रास्ते में मेरा नफ्स लग रहा है, मेरी जान लग रही है, तू इसको मोटा कर चुकी हूँ मैं इतना खिला पिला के, अब इसको अपने रास्ते में लगा दे, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इंसान की कितनी कदर करता है। और फिर आप देखिए कि अगली चीज़ वह समरात, फलों में कमी। मदीना के लोग किसान थे, खड़ी फसलें छोड़ के उनको अल्लाह के रास्तों में निकलना पड़ा तबूक में। अल्लाह कहता ये तो होंगे फल कम होंगे तुम्हारे, लेकिन वबशिर साबरीन, खुशखबरियां दे दो सब्र करने वालों को। ये सब्र करने वाले कौन होते हैं? रोते धोते आंसू पोंछते, क्या बताएं तुम्हें अपना हाल, कितने दुखी हैं, हाय कितना काम है, हाय कितने टेस्ट, हाय कितनी तैयारियां, कितने घंटे पढ़ना होता है, नेवर। ये साबिर नहीं है। अब यहां से आपको और मुझे साबिर की तारीफ दिखेगी।
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ